نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے یہاں بھی سہولت فرما دی اور جمعہ کے لیے کافی کشادگی ہو گئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے عبد الرشید صاحب اور ان کی فیملی کو کہ انہوں نے یہ کارپیٹ کا کام سنبھال لیا، اور ان کا یہ طریقہ بہت پسند آیا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو جمع کر کے سب سے کلیکٹ کر لیا. تو ماشاءاللہ سے $8,000 کے قریب اس میں لگے سارے میں، تو وہ انہوں نے سنبھال لیا. ایک کام اور ہے، اگر کوئی فیملی اس پر توجہ دے، وہ یہ ہے کہ چھت میں دو تین جگہوں سے ٹپک رہا ہے، یہاں پر یہ سیدھے رائٹ پہ ٹپک رہا ہے، لیفٹ پہ بھی ٹپک رہا ہے، تو تھوڑا سا ریپیئرنگ کا کام ہے اس کی. اور باہر کا کام ہے تعمیر کا، تو تھوڑا سا لائسنس یافتہ آدمی سے شاید کرانا پڑے گا وہ، تو اس میں بہرحال ریپیئرنگ کے لیے بھی 10-12,000 سے کم لگنے کی امید نہیں ہے. تو اگر کوئی فیملی اس طرح سے اس کے چھت کی ریپیئرنگ کی ذمہ داری لے لے اور وہ اس کو کرا لے، تو اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے اور بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو آخرت کے ذخیرے کے لیے استعمال کریں. ہماری زبان جو چلتی ہے اس کو حصیدہ کہتے ہیں عربی میں. حصید اصل میں پھل پکنے کے بعد کاٹنے کو کہتے ہیں. جب غلہ پک جاتا ہے تو جو اس کو کاٹا جاتا ہے، پھل توڑا جاتا ہے، غلے کو کاٹا جاتا ہے، تو اس کو حصیدہ کہتے ہیں. تو ہماری زبان جو بولتی ہے تو وہ کچھ غلہ کاٹتی ہے، کچھ پھل کاٹتی ہے. جو چیز کاٹی ہوئی ہے وہ چیز جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اگر وہ جنت کی ہے، جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے اگر وہ جہنم کی. اور یہ مطلب ہے اس جملے کا کہ وحل یکب الناس علی حصائدہم، وحل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم. لوگوں کو اوندھے منہ جہنم کے اندر گرانے والی چیز ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہے. وہ آپ لوگوں کے لیے وہاں بنا دیا ہے جگہ، نہیں بھائی وہ لین اسی لیے ہے، جو معذور حضرات ہیں وہ اس پہ بیٹھ جائیں. اس لیے یہ تو ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ تعالیٰ شانہ نے ایک ایسا جسم اور ایک جسم عطا فرمایا کہ جس میں عجیب و غریب خصوصیتیں ودیات ہیں. اس کے اندر ہمارا ذائقہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے تکان سے اس کو الگ رکھا ہوا ہے کہ تھکتی نہیں ہے، جتنا چاہے استعمال کرو. اس میں جو آفتیں ہمارے ساتھ متعلق ہیں بے توجہی کی وجہ سے، جو بیماریوں کا ہم شکار ہوتے ہیں اور زبان سے جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ان کا مذاکرہ کیا جا رہا تھا تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں. اس میں سے گزشتہ جس کا ذکر آخر میں آیا تھا وہ فحش گوئی اور سب و شتم تھا. فحش گوئی کا مطلب بے حیائی کی باتیں کرنا. بے حیائی کی بات کیوں جاتی ہے کہ بے حیائی کے کام سے جیسے آدمی لطف اندوز ہوتا ہے، بے حیائی کی بات سے بھی ایسے ہی لطف اندوز ہوتا ہے. تو جیسے بے حیائی کا کام اگر وہ شریعت میں ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کی شریعت میں گنجائش ہے تو اس سے لطف اندوز ہونا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے، یہی کیفیت زبان کی ہے. اس لیے ہر وہ بات جس کا اخفا سے تعلق ہے، چھپانے سے تعلق ہے، ہر وہ کام جس کا چھپانے سے تعلق ہے، اللہ نے انسانوں کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں तो उन तमाम उमूर में उसको ज़ुबान पे भी लाने से गुरेज करना है, वरना वो फहश हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने बाज़ाब्ता इसका हुक्म दिया हुआ है, वयनहा अनिल फहशा, हर जुमा में जो बात पढ़ी जाती है सबसे आखिर में वो ये है कि अल्लाह ताला तुमको आदल का हुक्म फरमाते हैं, एहसान का हुक्म फरमाते हैं, और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक का हुक्म फरमाते हैं, और फहश से मना करते हैं। क्योंकि फहश का बोलने का रिवाज या करने का रिवाज आम होगा तो दीन नहीं रहता फिर बाकी। और मुनकर से मना फरमाते हैं, वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़्य, बगावत और सरकशी से मना फरमाते हैं। इसी से मुतालिक गाली गलौज है, सब व शतम है, बुरा भला कहना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बड़ा गुनाह है कि आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। साहबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन अपने माँ बाप को गाली देगा? फरमाया कि तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो पलटा के तुम्हारे माँ बाप को देगा, और ये तुम्हारे माँ बाप को गाली जो दूसरा बंदा देगा उसका सबब तुम ही बने हो, तुम्हारे देने की वजह से उसने दी, लिहाजा तुमने ही अपने माँ बाप को गाली दी। अपने माँ बाप को गाली मत दो, और इसका मतलब दूसरे के माँ बाप को गाली मत दो। घरेलू झगड़ों के अंदर जो बात हमारे पास काउंसलिंग में पेश आती है वो ये है कि जब मियाँ बीवी के माँ बाप को गाली देता है तो फिर बीवी भी पलटा के इसके माँ बाप को कुछ बोलती है, या बीवी माँ बाप को यानी अपने सास ससुर को गिनती है तो फिर ये पलटा के उसके सास ससुर को गिनता है, वो इसके ख़ानदान पे आती है, यह उसके ख़ानदान पे जाता है, और ये जाहिर है कि बिल्कुल ही गलत बात है। भाई तुम्हारा अपना मामला है, मियाँ बीवी का ख़ानदान को क्यों गिनते हो? ख़ानदान को गिनने की बीमारी बहुत बुरी है घरों के अंदर, ख़ानदान नहीं गिनना चाहिए कभी भी। तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तो उसने ये किया है, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारी माँ ने, भाई माँ बाप को छोड़ो, हर एक अपना अपना जिम्मेदार है यहाँ पे। अल्लाह ताला की आदत तो ये है कि शैतान के पेट में से वली, वली के पेट में से शैतान निकलते ही रहते हैं। हज़रत नूह अलैहि सलाम के पेट में से उनका बेटा यानी उनकी औलाद में से उनका बेटा काफिर हुआ क्या नहीं हुआ? और हज़रत आदर के घर में से हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम पैदा हुए क्या नहीं हुए? ये तो कौन पर्सन का मामला है, फर्द कैसा है, खानदान को गिनने की क्या जरूरत है? तो गाली गलौज से मना किया गया है इस्लाम में कि तुम गाली गलौज मत करो। सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़िताल्हु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। उसका जिक्र गुज़िश्ता जुमा हो चुका है थोड़ा सा। आज जो है एक चीज है लानत करना, यह भी हमारी आफतों में से एक आफत है, जुबान की आफतों में से बड़ी ही आफत है। लानत के माने हैं अल्लाह तबारक व ताला से दूर होने को बताना, अल्लाह से दूर करना, अल्लाह की रहमत से दूर करना। और अल्लाह की रहमत से कौन दूर है कौन नहीं है हम नहीं जानते, लिहाजा हमें हक नहीं पहुंचता लानत करने। इसीलिए लानत जो है वो सही नहीं है। लानत हमेशा औसाफ पर करने की इजाजत है। झूठ बोलने वालों पर लानत है, झूठे पर लानत है, रुश्वत पर लानत है, सूद पर लानत है। अगर कोई आदमी सूद खाता है तो तुझ पर लानत है, ये बोलना सही नहीं, क्योंकि वो तौबा कर लेगा तो तब तो नहीं रहेगा ना उसके जिम्मे, वो लानत का मुस्तहिक नहीं रहेगा। झूठे पर लानत है सही है, लेकिन तू झूठा है चूंकि इसलिए तुझ पर लानत है, ये सही नहीं। क्योंकि लानत का तो मतलब रहमत से दूरी है, और इसका इससे गलत अमल ज़रूर सादिर हुआ है, लेकिन अगर ये तौबा कर लेगा तो रहमत से दूरी का सबब तो बाकी नहीं रहेगा ना। इसीलिए किसी पर लानत को मना किया गया है। लानत की इजाज़त सिर्फ उस पर है जिसका कुफ्र पे मरना मालूम हो गया हो। लानत की इजाज़त सिर्फ उस पर है जिसका कुफ्र पर मरना मालूम हो गया हो। ये काफिर होकर मरा है, कुफ्र पर मरा है। अबू जहल पर लानत करें कोई हर्ज नहीं, अबू लहब पर लानत करें कोई हर्ज नहीं, जिसका कुफ्र फिरौन पर लानत करें, जिसका कुफ्र पर मरना साबित हो चुका हो उस पर लानत जायज़ है। और दुनियावी ज़िंदगी में जब तक वो मरा नहीं है उस वक़्त तक उसकी गलती की वजह से उस पर लानत जायज़ नहीं होती, क्योंकि
शिर्क के अलावा चाहे कितना ही बड़ा गुनाह हो वो गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा से आदमी ईमान से खारिज नहीं हुआ, वो तौबा से अल्लाह माफ़ भी फरमा देते हैं। लिहाजा उन गुनाहों की वजह से उस फ़र्द पर, उस शख्स पर लानत नहीं की जा सकती। अभी अभी मौका नहीं आया उस पर लानत करने का। औसाफ़ पर लानत है। लानत के असबाब तीन हैं असल में, एक कुफ्र है और एक फिस्क है और एक बिदात है। बिदात को फिस्क से अलग इसलिए रखते हैं कि बिदात अपने शेप में और अपने मटेरियल में बुरा अमल नहीं होता, यानी वो बुराई की हैसियत से नहीं जाना देखा जाता कि ये कोई बुरा अमल कर रहा है एक आदमी। बिदत कहते हैं दीन समझकर किसी ऐसे काम को करना जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो वो जाहिर है कि दीन समझ के जब बंदा कोई काम कर रहा होगा तो वो देखने में और अपने मटेरियल में बुरा नहीं होगा, मगर वो लानत का मुस्तहिक है। वो भी वो आम दूसरे गुनाहों से भी बड़ा गुनाह शुमार होता है इस्लाम में। शिर्क के बाद में बिदअत है, बिदअत के बाद में फिस्क है, और इसी वजह से बिदअत के मामले में बहुत मोहतात होना पड़ता है। जिसको उलमा बिदअत कह दें बहुत एहतियात बरतना, मगर जिसको गैर उलमा बिदअत कह दें उसमें उसका पता नहीं रहता कुछ। इसी वजह से किसी चीज़ के बिदअत होने का हुक्म लगाना नहीं लगाना ये भी बारीक चीज़ है थोड़ा। हमारे हमारे ज़माने में हमारे सलफ़ी भाइयों की तरफ से जो बिदअत का हुक्म होता है वो सही नहीं रहता, उन्हें पता नहीं है बिदअत की हकीकत क्या है, बिदअत की तारीफ क्या है, पूरी पूरी बात नहीं मालूम है उनको, गलत फहमी का शिकार है बहुत सी चीज़ों में। और एक तबका मुसलमानों में ऐसा भी है जिसके पास कोई चीज़ बिदअत है ही नहीं, वो भी गलत है। कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और ऐज़ दीन अंजाम दिए जा रहे हैं, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना आपके बताए हुए बातों की रेंज में उसकी रोशनी में वो आते हैं, तो फिर क्या हुक्म लगाएंगे उलमा पर? बिदअत का तो हुक्म लगेगा। और एक गलत फहमी का सबब वो और होता है, वो ये कि जो काम किसी ज़माने में बिदअत हो जाए ज़रूरी नहीं है कि वो जब शुरू हुए थे जब भी बिदअत हों। ये गलत फहमी असल होती है। इस ज़माने में जिन चीज़ों पर उलमा बिदअत का हुक्म लगाते हैं अपने स्टार्टिंग में वो बिदअत नहीं थे, ये है असल गलत फहमी का सबब। पहले वो एक मामूल की हैसियत से, मुसलमानों को दीन पर लगाने की हैसियत से, काम कराने की हैसियत से राइज थे, वो बुज़ुर्गों के तरीक में राइज था। वो शुबा यही होता है कि वो बुज़ुर्गों से साबित है लिहाजा ये बिदअत कैसे हो जाएगा? नहीं भाई, उस वक्त नहीं था, उस वक्त ऐसा नहीं होता था, उसका तरीक़ेकार दूसरा था, उस वक्त तक उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हुई थी। क्योंकि बिदअत का हुक्म लगाने के कुछ उसूल हैं किसी अमल पर, वो पाए नहीं जाए, वो शराइत पाए नहीं जाते थे, तो वो हुक्म जब नहीं लगा था बाद में पाई गई तो उस पर हुक्म लग गया, तो वो गलत फहमी का सबब हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ बिदअत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ बिदअत है, मगर जो बिदअत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी शुमार होती है, ये कायदा है। जैसे शिर्क जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के अगेंस्ट में है, ऐसे ही बिदअत जो है वो सुन्नत के अगेंस्ट में है। शिर्क का मुकाबला अल्लाह से है, बिदअत का मुकाबला रसूल से है। शिर्क करने वाला अल्लाह ताला को ऐबदार करार देता है, बिदअत करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐबदार करार देता है, इतनी नज़ाकत है उसमें। तो इसलिए कुफ्र है और फिस्क है और बिदअत है, ये उमूर लानत के असबाब में से हैं। मगर ये जो आमाल हैं तीन किस्म के, ये अमल पर लानत की जाएगी, आदमी पर लानत नहीं की जाएगी जब तक कि उसका कुफ्र पर मरना साबित ना हो। और जानवर पर भी नहीं की जाएगी, सवारी पर भी नहीं की जाएगी, घर पर भी नहीं की जाएगी, हत्ता के ज़मीन पर, पहाड़ पर नहीं की जाएगी, ना हैवाना इंसानों पर, ना हैवानात पर, ना जमादात पर, लानत किसी पर नहीं की जाएगी। क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आता, इस वजह से अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को देखते थे, तो आपके ज़माने में ऐसे ऐसे बातें सामने आती थी कि कोई हद नहीं। एक ऊँटनी ने एक औरत को सताया, ऊपर बैठ के जा रही थी वो, उसने उसको तंग किया, उसने उस पर लानत कर दी, उस पर खुदा की लानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सामान इसका फौरन उतार लो और उतर जाओ इस पे से, इस वास्ते कि इस पर लानत पड़ चुकी है, अब अगर कोई इस पर बैठेगा तो गिरफ्तार मुसीबत होगा। सहाबा फरमाते हैं कि हम वो ऊँटनी को बहुत अरसे तक देखते रहे कि खाली फिरती थी, कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता था। अब जहाँ जहाँ गाड़ी ने जरा सताया लानत की, फिर उसी को स्टार्ट करके फिर चलना शुरू कर दिया। बच्चों पे लानत है, बच्चों पे फिटकार है, बीवी पे लानत है, बीवी पे फिटकार है, बीवी पे लानत भी कर रहे हैं, फिर उसी मलूना के साथ लगे हुए भी हैं। लानत के बारे में ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लानत की जाती है तो वो दो में से किसी एक पर जरूर पलट जाती है। जिस पर की गई अगर वो उसका मुस्तहिक है तो वो उस पर पड़ जाएगी, और अगर वो उसका मुस्तहिक नहीं है तो यह लानत पलट जाएगी, फिर लानत करने वाले पर आ जाएगी। लानत बहुत नाजुक चीज है असल, और यह जुबान से होती है, इसलिए यह आफात जुबान में से है, और इसका बड़ा नुकसान होता है। बाजी माएँ अपने बच्चों पे लानत की आदी होती हैं, बददुआएं दे रही होती हैं, लानत कर रही होती हैं, फिटकार कर रही होती हैं। लफ्ज़ लानत ही छोड़ देना चाहिए। लैसल मुमिनु बिल्लान, ईमान जो है वो ईमान वाला वो लानत करने वाला नहीं होता। वलत्तआन, और ना ताना देने वाला होता है। वलल फाहिश, और ना फौशगोई करने वाला होता है। वलस सखाबु फिल अस्वाक, और ना बाजार में चीखने वाला होता है। बाज़ लोगों को बाजारों में चिल्लाने की बहुत आदत होती है, जब ज्यादा शोर होता है तो ये बोलता है अरे भाई जरा आवाज़ कम करो, क्या मछली बाजार बनाया हुआ है। बाजार में चिल्लाना ये ईमान वाले की सिफत नहीं है। आहिस्ता बोलो। एक है अपने सामान को बेचने के लिए चिल्लाना, वाहिद रियाल वाहिद रियाल वाहिद रियाल चिल्लाते रहते ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अमरूद बेचने के लिए अमरूद वाला चिल्लाता रहता है, फोन कार्ड बेचने के लिए यहाँ पे भी सिलसिला शुरू हो गया चिल्लाने का, वो तो कारोबार के लिए। और एक ये कि आपस में एक दूसरे से को मुखातब बना के जो चिल्लाना होता है वो नहीं चाहिए। तो लानत से अपने आप को बचाना है कि लानत भी आफाते लिसान में से है। ना गाड़ी पर कभी लानत करें, ना बीवी पर कभी लानत करें, ना बच्चों पर कभी लानत करें, ना बीवी शोहर पर लानत करे, ना माँ अपने औलाद पर लानत करे, ना घर पर लानत की जाए, ना जमीन पर लानत की जाए, ना गुनहगारों पर लानत की जाए। अफराद पर, गुनाहों पर लानत की जा सकती है। और एक आफत जुबान की जो है वो अशआर के जरिए से भी होती है। शायरी भी आफतों में से एक आफत है, मगर उसके हदूद हैं, उसकी थोड़ी सी तफसीलात हैं। घड़ी सही है इधर की, ठीक है। अशआर में ये बात है कि अच्छा शेर अच्छा है और बुरा शेर बुरा है। अशआर में अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, और वैसे शायरी का ज्यादा ज़ौक रखना ये इस्लाम में पसंद नहीं किया गया है। एक है बेतकल्लुफ बगैर किसी एहतमाम के शायरी हो जाना, मिजाज ही ऐसा है। बहुत से औलिया अल्लाह के अंदर शायरी बहुत थी, सहाबा में भी शायर थे। और एक ये है कि सर पे समाना उसका और बाज़ाब्ता शायरी करना तकल्लुफ करके, इसको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि कुरान पाक में है वश्वराउ यत्तबिउन अलगावून अलम तरअन्नहुम फी कुल्लि वादी यहीमून। देखते नहीं आप शुअरा को कि कैसे भटकते फिरते हैं और हर जंगल के अंदर हैरान सरगर्दान रहते हैं, क्योंकि मानी के जंगल में, तसव्वुरात के जंगल में, ख्यालात के जंगल में हैरानी और सरगर्दानी शायरों का काम है। तारत खाने में से निकल रहे नहीं शायर साहब, निकल रहे निकल, लेकिन दिमाग चल रहा था एक शेर की तरफ, वो सोच में बैठ गए वहां पर। तो शायरी भी जो है ये मुसीबत है जुबान की, आफात लिसान में से है, मगर अच्छा शेर अच्छी बात है और बुरा शेर बुरा है। अगर किसी में कोई सिफत मौजूद है और उसको शेर में बयान किया जाए तो वो सही है, और उसमें थोड़ा मुबालगा किया जाए तो भी सही है, क्योंकि शायरी का की बुनियाद मुबालगे पर है। आप किसी के हुस्न की तारीफ करें और ये बोलें कि माशाल्लाह आप बहुत हसीन हैं, तो ये क्या शायरी हुई? حسن کی تعریف میں آپ یہی بولیں گے کہ چاند بھی آپ سے شرمندہ ہے، ستارے بھی آپ کے پسینے کے ٹپکے ہیں، اس قسم کی کوئی بات کریں گے تو پھر وہ شاعری ہے. تخیل کی پرواز کہ کائنات میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو آپ استعارات اور تشبیہات میں لے آئیں، بھئی سمندر سے زیادہ تو اس کا چوڑا اس کا سینہ ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تو اس کا عزم ہے، اس کی ہمت ہے. تب یہ تھا پر یہ دریا پہاڑ سمندر ہمارے عزائم اور ہمارے اس کے مقابلے میں تو بہرحال اس کی حیثیت نہیں ہے. تو اگر کسی میں کوئی وصف ہے اور آپ بول رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا مبالغہ بھی کریں تو اس کی اجازت ہے، لیکن نہیں ہے اور تعریف کریں، ہے بخیل لیکن ملا دیا اس کو حاتم تائی سے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوتا. تعریف کے اندر، شاعری کے اندر ایک بات ہے. قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ والشعراء یتبعون الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون و انہم یقولون ما لا یفعلون. ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بولتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. شاعر عام طور پر جو ہے نا وہ جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو کرنے کی عادت نہیں ہوتی زیادہ، اور جو کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ بولنے کا عادی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مثل مشہور ہے نا اردو میں کہ جو بادل گرجتے زیادہ ہیں پھر وہ برستے نہیں، جو کتا بھونکتا زیادہ ہے وہ کاٹتا نہیں، مشہور ہے اس طرح کی چیزیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون. جب مسلمانوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا، حوصلے ان کے چھوٹے ہو گئے، تو ان کی بلند پروازیاں آسمانوں پہ چلی گئی خیالات کے اندر، ہم تو بھی. مگر قرآن پاک میں استثناء فرمایا گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. مگر وہ شعراء جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں. شاعر اگر کثرت سے ذکر کرنے والا ہے، ذاکر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی شاعری کے اندر وہ انوارات آئیں گے، وہی باتیں آئیں گی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں گی. اسلام میں بڑے شاعر پیدا ہوئے، شاعر مشرق علامہ اقبال، کیسے ان کے اشعار ہیں. اولیاء اللہ میں بڑے گزرے، صحابہ میں گزرے، حضرت حسان ابن ثابت مشہور شاعر صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ان کو بٹھا کے اشعار سنتے تھے، فرماتے تھے کہ تم جواب دو اسلام کی طرف سے. وہ واحد شخص ہیں جو حضور کی موجودگی میں ممبر پر چڑھے ہیں، ورنہ کسی کوئی نہیں چڑھا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم ہونے کی وجہ سے حمایت میں بول رہے ہوں. وانتصروا من بعد ما ظلموا، مظلومیت کی وجہ سے حمایت میں بول رہے ہوں، پھر ایسے شاعروں کو اجازت ہے. قرآن پاک میں اس کا استثناء کیا گیا ہے. مگر ایک عام کامن بات ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ شعر گوئی بھی زبان کی آفتوں میں سے ہے، جبکہ اس کی حدود کی رعایت نہ کی جائے. ظاہر ہے کہ حدود تو اس کے تھوڑے سے پھیلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کیے جائیں گے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں.